सभी श्रोताओं और शिक्षार्थियों को मेरा नमस्कार। ये जो आज का टॉपिक है, नेशनल लेवल पर इसका बहुत ज़्यादा चर्चा है और ग्लोबल लेवल पर भी हम इसको जानना अति आवश्यक है, क्योंकि ये सिर्फ न्यूट्रिशन स्टेटस हमने शब्द तो सुना है, पर हम ज़्यादातर हम इसमें बातें करेंगे कि मैलन्यूट्रिशन क्या होता है, क्यों होता है और इससे आप क्या कारण हो सकते हैं और कैसे आप बच सकते हैं, और इस बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो जो एक हमने शब्द चुना है वो है न्यूट्रिशनल स्टेटस। अब मैं दोनों को अलग अलग पहले परिभाषित करूंगी जो आपको समझने में आसान हो। स्टेटस शब्द जो होती है वो सभी ने सुना होता है कहीं ना कहीं। स्टेटस का मतलब होता है अवस्था, कि आप किस अवस्था में हैं और अवस्था कैसे बनती है, आपकी व्यवस्था से अवस्था बनती है। अब जब हम न्यूट्रिशन को लेके बात कर रहे हैं तो न्यूट्रिशन क्या है? एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट। हमारा कोई खान पान जो आलू टमाटर ये न्यूट्रिशन नहीं है, इनके अंदर न्यूट्रिएंट है जिससे उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बनती है, ठीक है। अब एक और अवस्था में आप आइए उसको, जो आप खाना खा रहे हैं वो हमारे अंदर जा रहा है और अंदर जाके खाना भूल जाता है कि भाई मैं ओरिजिनल फॉर्म में क्या था, पिज़्ज़ा था, पराठा था, मालूम नहीं। मगर हाँ, शरीर को इतना ज़रूर मालूम है कि उस आलू के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट थे या उस पिज़्ज़ा के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट थे जो मैं उसको उपयोग कर सकता हूँ, जो मेरे मतलब की चीज़ें हैं, बाकी को वो बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पर जो आप बात समझने की है वो यानी कि जो भी बॉडी न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करती है और फिर जो हमारा बॉडी का व्यवस्था बनती है, स्वास्थ्य या अस्वास्थ्य, वो हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है, ठीक है। क्योंकि कोई खाना जो है वो हम कभी खाते, अभी ये शब्द हम जनरली हेल्थ के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मगर हेल्थ के बहुत सारे पैरामीटर हैं। वो बनती भी तभी है जब आपकी शरीर उन पोषक तत्व को प्रयोग कर लेती है, अदरवाइज वो हेल्थ भी नहीं बनती है। तो अगर हम इसको टेक्निकली देखें, इट इज ए कंडीशन ऑफ द हेल्थ ऑफ अ पर्सन दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द न्यूट्रिएंट इनटेक एंड utilization of the nutrient by the body and that is called nutritional status. I repeat, क्योंकि इसके अलग अलग भाग हो गए और ये अक्सर आपके एग्जाम में भी आता है। वहाँ पर तो आपका एक नंबर का सवाल आ गया, अब आप देख रहे हैं कि न्यूट्रियन लिखें क्या नहीं करें। तो आप समझिए, कंडीशन ऑफ द हेल्थ ऑफ द पर्सन, और ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हेल्थ कंडीशन ऑफ द पर्सन विच इज इन्फ्लुएंस बाय द न्यूट्रिएंट इनटेक, यानी कि जो आपने खाया, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट जो आपकी बॉडी ने यूज किया, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज न्यूट्रिशनल स्टेटस।
राइट,
होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जब हम बात कर रहे हैं तो एक तो नॉर्मल स्थिति होती है और एक एबनॉर्मल स्थिति होती है। नॉर्मल स्थिति को हम कह देते हैं हेल्थ, ऑप्टिमल हेल्थ, और इसमें भी दो ही बातें हैं कि भाई आपका बैलेंस अगर सही से इनटेक होगा और सही से आपकी बॉडी भी यूटिलाइज कर पाएगी तो वो नॉर्मल न्यूट्रिशनल स्टेटस होगा। दूसरा फॉर्म जो एबनॉर्मल है उसको हम टेक्निकली मैल न्यूट्रिशन शब्द देते हैं, यानी कि आपने जो खाना खाया वो भी इम्बैलेंस है और जो आपके शरीर में यूटिलाइज हुआ वो भी इम्बैलेंस है। अब हम आपको इसका एग्जाम्पल से समझाते हैं। हम आपको जाने कितनी बार बैलेंस डाइट की डेफिनेशन बता चुके हैं, मैं फिर दोहराती हूँ। बैलेंस डाइट इज द डाइट विच प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द रिक्वायर्ड अमाउंट एज पर योर बॉडी कंडीशन according to the age, gender and activity. Of course, in physiological status, that can be pregnancy or lactation, which is natural. Utilization of the body, if your body is healthy, not diseased, which can be from diarrhea, fever, diabetes, headache, anything. During that disease condition, our body is not able to utilize our food. प्रॉपरली और 100%। बट इन हेल्थ कंडीशन बॉडी इज एबल टू मैनेज द फूड। इफ वी ईट इम्बैलेंस फूड, फॉर एग्जाम्पल वी ईट ओनली द राइस एंड वी डू नॉट ईट द चपाती, दाल, वेजिटेबल्स, मिल्क विच बिलोंग्स टू द 5 फूड ग्रुप, अगर उसमें हमें नहीं मिलता है देन वी से योर इनटेक ऑफ द फूड इज इम्बैलेंस्ड। If it is continuously for many months, days, years, then it will reduce the capacity of the body to utilize whatever you are eating properly. अगर आप लगातार को, बहुत सारे लोग आज कभी कोक पी ले रहे हैं, कभी चाय पी ले रहे हैं, कभी सैंडविच खा पा रहे हैं, पूरा खाना ही महीनों सालों नहीं खा पा रहे हैं, कभी एक दिन खा लिया तो बॉडी ये समझना भूल जाती है कि वो क्या उसको ज़रूरत है, और वो कहीं कहीं हमारी सिम्टम्स दिखाती है, हम उसको भी इग्नोर कर देते हैं, तो हमारी बॉडी की कैपेसिटी जो है उसको यूटिलाइज करने भी कम हो जाती है। अब मैं बताती हूँ एक एग्जांपल के साथ। डायरिया यानी कि दस्त बहुत कॉमन सी बीमारी है एक, और बच्चों में ये बहुत कॉमन हो, तो उससे क्या होता है हमारा शरीर का पानी भी बाहर निकल जाता है और पानी में घुलने वाले जो हमारे पोषक तत्व हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं। और अगर हम इसको समय से रिप्लेस नहीं करते हैं
जी।
दवाई देके हम स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं, मगर जो हमारा पोषक तत्व बाहर निकल गया है उसको भी रिप्लेस करना अति आवश्यक है।
बिल्कुल।
और इसीलिए आपको बार बार बताया भी जाता है कि भई आप जीवन रक्षक घोल का इस्तेमाल करें, इसके अलावा आप खाना तुरंत बंद ना कर दें, आप अच्छे से हम बताते हैं बार बार कि आप खाने का फॉर्म बदल दीजिए, लिक्विड दीजिए, सेमी सॉलिड दीजिए, उसको ज्यादा फ्राइड मत दीजिए, ये मत दीजिए, वो हमने कई बारी चर्चा करी है
जी।
मगर यहाँ पे ये जरूरी है कि हम उसको वापस, मगर कई बारी क्या होता है कि भाई उसको बीमार हो गया, हम उसका पूरा खाना हटा देते हैं, फॉर्म नहीं बदलते, हम पूरा खाना हटा देते हैं, तो उसके शरीर में वो शक्ति कम होने लगती है, वो फिर से बीमार हो जाता है, जिसको हम एक लार्जर वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, इम्यूनिटी कम हो गई, ये बच्चा बार बार बीमार पड़ जाता है। भाई क्यों पड़ जाता है बीमार? इसलिए पड़ जाता है कि उसके अंदर जो रिक्वायर्ड अमाउंट उसको पोषक तत्व चाहिए वो मिल नहीं रहे, और बीमारी के बाद आप तुरंत उसको पोषक तत्व ढेर सारा देने की कोशिश करते हैं, मगर हमारे शरीर की क्षमता उतनी नहीं है कि उन पोषक तत्व को पूरी तरीके से उपयोग कर सके। तो यानी कि आपका मालन्यूट्रिशन के दौरान यूटिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट इज आल्सो रिड्यूस्ड। और हमारे शरीर की एक और अच्छी बात है, वो ये बात है कि हमारे शरीर की कुछ केसेस में यूटिलाइज करने की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कुछ ही न्यूट्रिएंट को, हर एक को नहीं, वो बढ़ जाती है। भाई शरीर का सबसे पहला काम क्या है? अपना बचाव करना। माइंड हमारा इस तरीके से काम करता है कि वो अपने आप को जीवित रखने के लिए जो भी ताकत लेना चाहता है वो ले लेता है। यानी कि एक हमारे कंपार्टमेंट्स में से एक चीज कमी हो गई तो वो दूसरे से लेके वो सर्वाइवल मोड में आ जाता है, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि वहां पे वो कमी पूरी नहीं होनी, वो दूसरी जगह से उठा के आई है, तो आपको वो पूरी नहीं, तो वो धीरे 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 फिर वो साइकिल बन जाता। आप तो सोचते हैं हम तो ठीक है, मगर हकीकत में ऐसा हर बार नहीं होता है, और इसीलिए फ्रीक्वेंट एपिसोड्स होते हैं किसी भी बीमारी के, किसी भी सिम्टम्स के। आप कह देते हैं कि भाई हमको जुखाम हो रहा है, चूंकि मौसम बदल रहा है। भाई क्या इतने लोग रह रहे हैं आपके इर्द गिर्द, हर एक को जुखाम हो गया है, उसके लिए भी तो वही मौसम है। यानी कि ये डायरेक्ट इंडिकेटर है कि आपके शरीर में कोई ना कोई जो है वो कमी है या इम्बैलेंस। इम्बैलेंस और कमी शब्द में अब मतलब समझिए जो आपको आगे मदद करेगी। कमी का मतलब है कि कोई न्यूट्रिएंट आप कम मात्रा में खा रहे हैं और या आपका शरीर उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। इम्बैलेंस का मतलब है कि एक चीज अधिक है और दूसरी चीज कम है। अब आप, मैं एक एग्जाम्पल खाने का लेके बताती हूँ कि आप एक चपाती खा रहे हैं और उसके साथ बटर भी खा रहे हैं, मगर साथ में आपको बटर के साथ रोल करी हुई चपाती या पराठा तो अच्छा लगता है, मगर उसके साथ आपको कुछ और खाना अच्छा नहीं लगता है। तो ये इम्बैलेंस हो गया। ये कैसे इम्बैलेंस हो गया? क्योंकि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है ओवरऑल हमारे पास फैट और कार्बोहाइड्रेट बढ़ गया, मगर उसको पाचन के लिए जो हमें विटामिन्स मिनरल चाहिए वो हमें नहीं मिले। और अगर ये रेगुलर फीचर बन जाता है आपका, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हमारी बॉडी में हो जाता है, जिसको कि हम मैल न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हम इसको फर्दर क्लासिफाई करेंगे
जी।
मैल न्यूट्रिशन दो तरीके से आपकी किताब में लिखा हुआ है, मगर इसके अभी और एक और क्लासिफिकेशन अभी आ गया है। दो इम्बैलेंस मैंने कहा, एक चीज की अधिकता और दूसरे की कमी, ठीक है। तो जो कमी वाली चीज है वो उसको कहते हैं हम अंडर न्यूट्रिशन, यानी कि जितनी आपकी जरूरत है शरीर को चलाने के लिए, उसका हाइट वेट मेंटेन करने के लिए, उससे कम मात्रा में आपका खान पान या पोषक तत्व आपके अंदर जा रहे हैं, इसलिए आपको अंडर न्यूट्रिशन हो गया है। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब हो सकता है कि आपकी वेट कम हो गया, आपकी उम्र के हिसाब से हाइट कम रह गई, या आपकी उम्र के हिसाब से हाइट और वेट दोनों ही कम रह गई, जिसको हम स्टंटिंग या छोटापन भी, कुछ लोग आपने देखे हो ना, छोटे रह जाते हैं, कुछ लंबे हो जाते हैं, कुछ बड़े ठीक ठाक लगते हैं। तो सब नॉर्मल लोग भी हैं हमारे यहाँ, छोटे लोग भी हैं, और ये अवस्था आपको रियलाइज होती है बहुत बड़े होके, मगर ये अवस्था हमारी शुरू हो जाती है जब कोई शिशु अपनी माँ के पेट में होता है।
अच्छा,
अगर तभी भी, और मैंने जैसे आपको बताया कि शरीर, माँ अपने शरीर का सारा कुछ देके बच्चे को तो बड़ा कर देती है, मगर उसमें कमी हो जाती है, मगर जरूरत से ज्यादा कमी अगर उसके भी खाने में रहेगी तो सूनर और लेटर बच्चे के हेल्थ पर भी फर्क पड़ेगा। इसीलिए हमारे कंट्री में जो अंडर न्यूट्रिशन है वो बहुत ज्यादा है, और हमारे ही कंट्री में नहीं, काफी लोगों में है। और हम बार 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 कई माध्यमों से, हम ही नहीं बाकी पूरे देश में इस बात की चर्चा होती है कि अंडर न्यूट्रिशन को कैसे कम किया जाए।
जी बिल्कुल,
क्योंकि वो ऐसा मत सोचिए कि चार साल के बाद लगा, अरे भाई मेरे बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, और उसको आपने ढेर सारी एनर्जी फूड देना शुरू कर दिया, तब उतना असर नहीं होगा जितना कि पहले साल में अगर आपने दिया होता, तब उसका असर अलग होता। कुछ चीजें रिवर्सल नहीं हो पाती हैं, वो हमारी अगर जेनेटिक लेवल पर चला जाए तो। इसका दूसरा भाग हमने बताया ओवर न्यूट्रिशन। ओवर का मतलब अधिकता, यानी कि आप जो न्यूट्रिशन खा रहे हैं उतनी आपकी जरूरत नहीं है, मगर आप फिर भी खा रहे हैं। अब किसी को समोसे अच्छे लगते हैं, किसी को पराठा अच्छा लगता है, किसी को बटर अच्छा लगता है, आप खाए जा रहे हैं। तो आपने देखा होगा बच्चे भी आजकल बहुत मोटे हो गए। मोटा होना और हेल्दी होना दो अलग अलग बातें हैं। पहले कहते थे नहीं, बच्चा अगर मोटा मोटा दिखेगा तो ये अच्छे परिवार की निशानी है। नहीं, मोटा खाली अगर एनर्जी से हो रहा है तो यानी कि उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है। इसीलिए मैंने वो आपको बोला इम्बैलेंस, वो एनर्जी फूड ज्यादा खा रहा है, न्यूट्रिशन नहीं खा रहा है, तो वो उसके रिस्क बीमार होने का कई गुना बढ़ जाता है। एक और क्लासिफिकेशन का मैंने मेंशन किया था, जो आगे आने वाले समय में हम विस्तार से भी चर्चा कर सकते हैं, वो ये है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। आपने शुरू के लेसन्स में पढ़ा होगा माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट, और मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया। मैक्रोन्यूट्रिएंट जिनसे एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। माइक्रोन्यूट्रिएंट जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं। तो आपने कार्बोहाइड्रेट तो बहुत खा लिया, फैट भी बहुत खा लिया, कुछ लोगों ने प्रोटीन भी बहुत खा लिया, तो एज ए रिजल्ट हमारा ओवर न्यूट्रिशन हो गया, मगर जो हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो आपने खाया ही नहीं, यानी कि शरीर को पूरी पोषकता नहीं। भाई इतना मोटा है फिर भी कह रहा है मैं कमजोर हूं, मुझसे काम नहीं हो रहा। जैसे ही ये सिग्नल आपके इर्द गिर्द आता है तो आप समझ लीजिए कि उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि विटामिन्स और मिनरल्स सभी प्रकार के नहीं मिल रहे हैं। उसके बारे में भी हम काफी चर्चा पहले कर चुके हैं। तो अभी हमने चर्चा करी कि मैलन्यूट्रिशन क्या होता है, वो दो भागों में बांटा गया है, अंडर न्यूट्रिशन या ओवर न्यूट्रिशन। और अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं जब एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट की कमी आपके शरीर में होती है तो अंडर न्यूट्रिशन कहलाता है। जब एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट की अधिकता आपके शरीर में होती है या आपके खान पान से होती है इसमें अक्सर एनर्जी रिच फूड ज़्यादा होते हैं और न्यूट्रिएंट बेस्ड फूड हमारे बहुत कम होते हैं, तो वो कंडीशन हम ओवर न्यूट्रिशन कहें। चलिए, ये तो हमने करी कि ये अवस्थाएं होती हैं, अब ये क्यों होती हैं, हम इनका और इनका क्या क्या हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है जिसकी वजह से ये अवस्थाएं आ जाती हैं
जी।
तो सबसे पहला कारण हम कहेंगे कि खाना अवेलेबल नहीं है। अब हम इस बात को कई सिनेरियो में देख सकते हैं। सपोज एक इंडिविजुअल है, उसको खाना अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो खाना पका नहीं पा रहा है, उसको वहाँ पे देर हो गई, जहाँ पे वो खाने खाने जाता था वो बंद हो गया, वो घर में अकेला रह रहा है। एक तो ये हो गई कि उसको खाना अवेलेबल नहीं होता है। जब हम इसको लार्ज पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि भाई वो खाना अवेलेबल इसलिए नहीं है क्योंकि उसको खाना खरीदने की क्षमता नहीं है। ये उससे थोड़ा लार्ज पर्सपेक्टिव हो गया। उससे भी लार्ज पर्सपेक्टिव हम देखते हैं कि हमारे यहाँ वो खाना उतना प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा कंट्री लेवल पर। जब हम इस, क्योंकि ये चर्चा सिर्फ एक इंडिविजुअल की नहीं है, ये हमारे पूरे देश की चर्चा है, तो हम देखते हैं कि हमारा फूड प्रोडक्शन जो है वो हमारे कम पड़ रहा है, कि जो हमारा यहाँ का हर व्यक्ति को खाना सफिशेंट नहीं मिल रहा है। हालांकि आज की अवस्था हम देखे जाएं तो हमारे यहाँ खाने की कोई कमी नहीं है। जब मैं नेशनल लेवल पर बात कर रही हूँ तो फूड प्रोडक्शन हमारे यहाँ सफिशिएंट है
जी,
तो वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वो एग्रीकल्चर या जो भी हमारा तरीका रहा, फूड की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। जहाँ तक फूड खरीदने की सवाल है, कुछ वर्गों को छोड़कर हमारे पास आज की व्यवस्था में हमारी परचेसिंग पावर काफ़ी है कि हम खाना खरीद सकें
जी।
वो अब एक इंडिविजुअल का मामला बन जाता है कि वो उस पैसे से खाना, स्वास्थ्य पोषक खाना खरीदना चाहता है या अपनी एक कंफर्ट या लग्जरी चीज़ें खरीदना चाहता है, मगर खाना खरीदने के लिए उसके पास सफिशिएंट पैसा है। तो जो अवेलेबिलिटी की बात आई वो तो, और तीसरा अब जहाँ खाना खाता है वही अवेलेबल नहीं है खाना, उसको पकाना नहीं आता है या उसको अभी तो भूख लगी है मगर इर्द गिर्द जो है वो खाना अवेलेबल नहीं है, तो वो एक और कारण हो जाता है कि जहाँ पे लैक ऑफ फूड है, और जिससे कि ओवरऑल जो खाना मेरे शरीर में जाना चाहिए वो मेरा फूड इनटेक कम हो जाता है। फूड इनटेक कम हो गया तो न्यूट्रिएंट इनटेक अपने आप कम हो जाएगा। तो कारण क्या बना, हमारा पहले खाना अवेलेबल नहीं है, वो हमने चर्चा करी किन किन कारणों से अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली हमारा फूड इनटेक कम होगा। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि इग्नोरेंस। अभी कहेंगे भाई सबको पता है खाना खाना चाहिए, इसमें इग्नोरेंस की क्या बात आ गई। इग्नोरेंस की सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि आपको खाना सिर्फ पेट भरने की तो जानकारी है, मगर मेरे शरीर का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए कितनी ज़रूरी है, कैसे वो बनना चाहिए, कौन सा मैं खाना चुनूं कि जिससे मेरा स्वास्थ्य लाभ हो, उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। तो इस केस में भी वो माल न्यूट्रिशन की स्टेटस, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन बहुत कॉमन चीज़ है। अब मैं एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। 7-8 महीने का बच्चा है, उसको आप सिर्फ दूध देते जा रहे हैं, चूंकि उस मदर को जानकारी, बच्चे को तो जानकारी इस उम्र में हो ही नहीं पाई सकती, उसकी मदर को या जो भी केयर टेकर है उसको जानकारी ही नहीं है कि 6 महीने के बाद मुझे अलग से खाना देना भी आवश्यक है, दूध उसकी बढ़ोतरी के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि इसकी जानकारी नहीं है। एक और एग्जाम्पल, अब बच्चा बड़ा हो गया, 4 साल का हो गया फॉर एग्जाम्पल, उसकी जो केयर टेकर हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी जानकारी नहीं है कि भाई ये बच्चा शौक उसका पूरा हो रहा है कि कभी उसको बर्गर चाहिए, कभी टॉफ़ी चाहिए, चॉकलेट चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, ये शौक करके वो अपनी मन तो पूरा कर ले रहा है, मगर उनको ये जानकारी नहीं कि लगातार अगर हम उसको देते जाएंगे तो आपका वो बच्चा माल नरिश्ड हो जाएगा, ओवर नरिश्ड हो जाएगा, और दूसरी तरफ से वो अंडर नरिश्ड हो जाएगा, फिर बार बार बीमार पड़ना है, और जब भी बीमार पड़ता है आप उसको डॉक्टर के ले जाते हैं, वो सिम्टम कंट्रोल हो जाते हैं दवाई से, मगर वो माल न्यूट्रिशन की अवस्था फिर भी बनी रहती है। उसको जानकारी नहीं है कि इस उम्र में मेरे बच्चे की हाइट कितनी होनी चाहिए, और वेट कितना होना चाहिए, इस उम्र में मेरा बच्चे को ये एक्टिविटी आ जानी चाहिए या नहीं आ जाए, क्योंकि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब आपके न्यूट्रिशनल स्टेटस पर निर्भर करता है। तो उम्मीद है आपको इग्नोरेंस का महत्व समझ में आया होगा। तो ये जानकारी आज बड़ों को भी नहीं है, सवाल करते रहते हैं कि भाई मुझे स्वस्थ रहने के लिए क्या खाना चाहिए। तो और ऐसा नहीं कि भाई दो दिन आपने खा लिया और इसका असर, खाना ज़रूरत ज़रूर है, मगर ऐसा मत सोचिए साथ के साथ कि आज आपने बैलेंस डाइट खा ली और कल से हमेशा के लिए आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा और कल आप दोबारा से अपनी पुरानी जो बिगड़ी हुई डाइट है उस पर आ सकते हैं। आपको ये परिवर्तन हमेशा के लिए लाना पड़ेगा अपने जीवन में, हमेशा के लिए हेल्दी रहने के लिए। तीसरी कंडीशन है इकोनॉमिक स्टेटस या कंडीशन, जिसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका परचेजिंग पावर कितनी है। बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के इतने चले हैं या हमारी व्यवस्था भी इस तरीके से बनती जा रही है, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो भी हम पहले ये सोच लेते हैं कि भाई इससे हम कितना अर्न कर सकते हैं। अब प्रायोरिटी हमारी अर्निंग तो बन गई, गवर्नमेंट ने भी जो स्कीम्स काफ़ी सारी ऐसी चलाई जिनसे परचेजिंग पावर पड़ गई। महिलाएं लड़कियां भी आजकल जो पहले कई वर्ष डिकेड्स पहले बिल्कुल नहीं अर्न करती थी वो भी आराम से अर्न करती हैं, मगर क्या वो अर्निंग कहाँ जा रही है? वो आपके कंफर्ट में ज़्यादा जा रही है, हेल्दी फूड में अभी भी बहुत कम है। तो एज ए रिजल्ट हम दवा पे तो कई गुना खर्चा करने के लिए तैयार हो सकते हैं और हो जाते हैं, मगर हम पोषक खाने पे तैयार नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप यहीं से, मैं इकोनॉमिक स्टेटस पे जब बात कर रही हूँ तो एक एग्जांपल देना चाहूँगी, तो आप स्वयं कैलकुलेट करके देखिए, एक विजिट जब आप एक डॉक्टर को देती हैं तो कितना भी कम लेता हो तभी भी अगर वही खाने का जब कैलकुलेशन करेंगी तो कई गुना कम होता है। आप एक खाना जहाँ पर हम बैठे हैं अभी, एक वक्त का खाना पूरा अगर भी खाएंगे तब भी 30 से 50 रुपए में आराम से खा पाते हैं, मगर 30 से 50 रुपए में आपका एक विजिट डॉक्टर की पूरी नहीं होती है। तो आपका कई गुना खर्चा हो रहा है आपका माल नरिशमेंट की वजह से और बीमारी उसकी वजह से बीमारी हो जाने की। तो अगर आप इकोनॉमिक कंडीशन को पूरी अच्छे से समझें तो आप इस बात को भी समझें कि क्या हमारा जो परचेजिंग पावर हमने बढ़ाई है, पहले हमें 50 रुपये दिहाड़ी के मिलते थे या किसी भी बात के मिलते थे, अब वो 100-150 मिल जाते हैं, पर क्या आपने बढ़ी हुई चीज़ में अपने खाने का बजट कितना बढ़ाया है, पोषक तत्वों में खरीदारी करने के लिए कितना बढ़ाया है, उसको आप असेस करके देखिए तो आपको समझ में आने लगेगा कि कहाँ पर हमें स्पेंड करने की ज़रूरत है। चौथा कारण है हमारा पुअर पर्सनल हाइजीन। ये आपकी पर्सनल भी है हाइजीन से भी बात कर रहे हैं, हम एनवायरमेंटल कंडीशन से भी बात कर रहे हैं, दोनों को जोड़ना इसलिए आवश्यक है। जैसे आपका पानी जो आता है आपके घर में, आपके नल में, आपके घड़े में, ग्लास में, वो आपका कहीं और से आता है, वो सप्लाई कहीं और से है, ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है
जी।
आप पानी अगर गंदा पी लेंगे किसी वजह से, कई बार पानी इतना क्लियर होता है आपको पता ही नहीं चलता है, इसमें सॉल्युबल जो चीज़ें हैं वो आपको मालूम ही नहीं चल रही और आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर इस्तेमाल नहीं करते हैं खाली, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वो कहाँ से आ रहा है। फिर आप खाना किस पानी में पका रहे हैं, नहा धो किस पानी में रहे हैं, बर्तन किस पानी से कर रहे हैं, वो पानी कहाँ जा रहा है, तो वो सब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप रोज नहा रहे नहीं नहा रहे हैं, आप खाना खाने से पहले हाथ धो रहे नहीं जा रहे हैं, आप बाथरूम जा रहे हैं टॉयलेट जा रहे हैं और उसके लिए जा रहे हैं, वो जो चीज़ है वो कहाँ पर जा रही हैं, क्योंकि आप उस रास्ते से चल के जा रहे हैं जहाँ पर जगह जगह कूड़ा भी पड़ा हुआ है, सॉलिड वेस्ट भी पड़ा हुआ है, सीवेज भी पड़ा हुआ है, नालियां भी चोक्ड हैं, तो इन सब का असर आपकी बॉडी पर पड़ता है, वो आपका इनहेल भी कर सकते हैं, आप उसको खा भी सकते हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा.
राइट.
तो क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो आपको दिखाई नहीं देते हैं, आपके खाने में चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है आपको. तो ये, और कई बार डायरेक्ट स्किन कॉन्टेक्ट भी हो जाता है. अगर आप पुराने चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं या जहाँ पे धूल है या आसपास गंदगी पड़ी है, तो हम इस सारी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो रूट है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो शरीर की क्षमताएं हैं, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है, जिसको हम इम्यूनिटी भी बोलते हैं, हालांकि इम्यूनिटी इंग्लिश शब्द है, प्रतिरोधक क्षमता हिंदी शब्द है, मगर आप जल्दी समझ जाते हैं, वो हमारी कम होने लगती है और एक ये साइकिल बन जाता है. यानी कि इम्यूनिटी कम हुई, बीमारी बढ़ गई और इम्यूनिटी कम हो गई, फिर बीमारी बढ़ गई, तो ये साइकिल होता है. आप अब लगातार आप उसी एरिया में रहते जा रहे हैं, उसी एरिया में आप वही चीज़ें खा रहे हैं, वही पानी का प्रयोग कर रहे हैं, मगर आप, जैसे मैंने इग्नोरेंस की बात करी थी, इस बात को आप समझ नहीं पा रहे कि ये भी एक कारण हो सकता है.
राइट.
मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मेरे पास टेबल भी है, ग्लास भी है, चेयर भी है, मुझे नहीं पता कि मेरे से पहले आने वाला व्यक्ति की क्या अवस्था थी, कितने कीटाणु यहाँ पर हैं, आई कैन नॉट सी देम. तो इसी तरीके से जहाँ आप रह रहे हैं, थोड़ा सा वहाँ पे सफाई रखें. चाहे आपका सिर धोना है, कंघा इस्तेमाल करना है, आपके खाने के बर्तन है, आपके कैरी करने के बर्तन है, स्टोर करने के बर्तन है, वो भी देखें. और जो चारों तरफ आपका जो रह रहने का अवस्था है, नाली तो बंद नहीं है, कूड़ा तो नहीं पड़ा है, उनको आप कम्युनिटी लेवल पर, म्यूनिसिपल लेवल पर, जहाँ पर भी है, उसको मैक्सिमम उसको क्लीन करने की कोशिश करने, नहीं तो इससे आपकी इन्फेक्शियस बीमारी लेने की बहुत बढ़ जाएंगी और फिर वो लगातार बीमारियां बढ़ती रहेंगी. फिर पांचवा है आपका स्ट्रेस कंडीशन. जब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेस, कोई कहता है मुझे एग्जाम का स्ट्रेस है, कोई कहता है मुझे अपने पीयर ग्रुप का स्ट्रेस है, वो कह रहा है मुझसे ये क्या मैं कर नहीं पा रहा हूँ, कोई कह रहा है मुझे अपने दोस्त का, कोई पेरेंट्स का, मतलब वो स्ट्रेस किसी ना किसी बात में फटाफट ले आते हैं.
सब पर हावी है.
और इवन जो लाइन में खड़े हैं, ट्रैफिक जाम है, या वहाँ पे चीजें अवेलेबल नहीं है, ना नेट कनेक्शन नहीं है, आ रहा है तो स्ट्रेस हो गया कि भाई मुझे तो अभी काम करना था, स्ट्रेस हो गया. ट्रेन लेट हो गई तो स्ट्रेस हो गया. तो यानी कि हर, पहले सिर्फ एक स्ट्रेस काफी अवस्था में होता था, मगर अभी बच्चे को भी, एडोलेसेंट को भी, एडल्ट को भी, एल्डर सबको स्ट्रेस है. मगर हम स्ट्रेस की बात आज क्यों कर रहे हैं? वो हम इसलिए कर रहे हैं कि जो स्ट्रेस होता है, ये हमारे माइंड को ही नहीं, हमारी पूरी बॉडी का जो न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन है उसको अफेक्ट करता है. और इससे क्या होता है, हमारा जो न्यूट्रिएंट हमने खाया भी है उसके बावजूद भी कम या ज्यादा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं.
अच्छा.
क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म हमारा इफेक्ट हो जाता है. अब आप देखिए, कई लोगों को थायराइड हो गया, किसी को डायबिटीज हो गई, किसी को कुछ हो गई, आप दवा तो खा रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कंट्रोल नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वहां पे स्ट्रेस अपना रोल प्ले कर रहा है.
राइट.
और स्ट्रेस सिर्फ आपको कई बार तो दिखता ही नहीं है. आपकी बॉडी के अंदर जो सेल का जो काम है, वो जो काम है, वो वहां तक एनर्जी पहुंच ही नहीं रही है, क्योंकि शुरू से ही आपकी जो बॉडी है वो न्यूट्रिएंट को एक तो पूरे मिल नहीं रहे हैं, ऊपर से जो मिल रहे हैं वो इम्बैलेंस्ड हैं, और ऊपर से हमारी बॉडी की कैपेसिटी भी कम हो गई है. बहुत सारे कारण हमने बात करी अभी. तो एज ए रिजल्ट जो होता है, हमारा ये प्रॉब्लम बढ़ता ही जाता है. तो आज जो आपने चर्चा करी है, उसमें आपने देखा कि आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है. मैं फिर से डिफाइन, इट इज ए स्टेटस ऑफ द हेल्थ विच इज अफेक्टेड बाय योर न्यूट्रिएंट इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट इन द बॉडी, एंड दैट स्टेट इज कॉल्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस.
राइट.
ठीक है,
बिल्कुल.
फिर ये नॉर्मल कैसे होता है? आपका बैलेंस फूड इनटेक से और बैलेंस यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट से. वो कब होगा? जब आपका नॉर्मल रेगुलर चलेगा। मैं ध्यान दीजिएगा, मैं रेगुलर शब्द को बार बार कह रही हूँ, यानी कि जो खाने का ताम आपने अभी बनाया है वो हमेशा वही रहना चाहिए। वैरायटी आप लीजिए, वैरायटी जरूरी है, मगर तारतम्य में मत बिगाड़िए। फिर मेल न्यूट्रिशन की बात करी, अंडर न्यूट्रिशन, एक से ज्यादा हमारे न्यूट्रिएंट अगर शरीर में नहीं है तो हमारा अंडर न्यूट्रिशन हो सकता है, उससे हमारी इम्यूनिटी खराब हो जाती है, उससे हमारी बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। फिर ओवर न्यूट्रिशन, एक से ज्यादा हम जो है न्यूट्रिएंट खा लेते हैं, खासतौर से एनर्जी रिच फूड ज्यादा खा लेते हैं, तो हमारा ओवर न्यूट्रिशन जो कि ओबेसिटी को लीड करता है। फिर हमने कारण पढ़े, क्या क्या कारण है, एक तो अवेलेबल फूड नहीं है जिससे कि हमारा इनटेक ही कम हो जाता है। फिर हमने सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, जो कि हमारे पास या तो मनी है नहीं किसी भी कारण से जो है, मगर वो उसको हम रीडायरेक्ट कहीं और कर दे रहे हैं। फिर हमारा कारण होता है इग्नोरेंस, कि हमको जानकारी नहीं कि सही खाना उस उम्र उस जेंडर के लिए उस अवस्था के लिए क्या है, कहाँ से मिलेगा सही पोषक तत्व। फिर हमारा एक स्ट्रेस कंडीशन के बारे में हमने बात करी, और लीस्ट एंड लास्ट हमने बात करी कि हमारा जो हाइजीन है, पर्सनल हाइजीन भी और सराउंडिंग सैनिटेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो इस चर्चा में उम्मीद है कि आपने सभी कुछ समझ लिया होगा।